पृष्ठ 174 सामयिक और शाश्वत समस्याएं। उपन्यास के उद्देश्य के संबंध में एक प्रश्न यह है कि उपन्यासकार सामाजिक समस्याओं, मिल मालिक और मजदूर, अछूतोद्धार, दहेज प्रथा, ग्राम सुधार आदि का ही उद्घाटन करे, अथवा शाश्वत समस्याओं, पति पत्नी संबंध, संतान अथवा दाम्पत्य और वात्सल्य का संघर्ष, जैसा कि टॉलस्टॉय के आना कारनीना नाम के उपन्यास में है, को ही अपनावे। कुछ समीक्षकों का ऐसा विचार है कि उपन्यासों में सामाजिक समस्याओं को न रखना चाहिए, क्योंकि उन समस्याओं के समाप्त हो जाने पर उनके संबंध में लोक रुचि भी समाप्त हो जाती है। गुलामी प्रथा अब हट जाने से अंकिल टॉम्स कैबिन, जिसका हिंदी अनुवाद टॉम काका की कुटिया नाम से हुआ है, अब कम पढ़ी जाती है। इसी प्रकार दहेज प्रथा संबंधी उपन्यासों का भी चलन कम हो रहा है। इस संबंध में हमारा यह मत है कि सामयिक समस्याएं भी शाश्वत समस्याओं के बदलते हुए स्वरूप हैं। अछूतोद्धार, विधवा विवाह अथवा दहेज प्रथा आदि का विवेचन व्यापक मानवता का ही रूप है। उपन्यासकार को यह उचित नहीं है कि वह केवल इसलिए कि सामयिक समस्या में लोक रुचि चिरस्थायी नहीं होती है, समाज की अपनी सेवाओं से वंचित रखे। उसको चाहिए कि सामयिक समस्याओं को चिरंतन और शाश्वत से संबंधित कर दे। आजकल पाठकगण उपन्यासकार से यह आशा रखते हैं कि वह न केवल समस्याओं का उद्घाटन ही करे, वरन उसकी तह में बैठकर सामाजिक रोगों का निदान कर उनके शासन का मार्ग भी निर्दिष्ट करे। यह सर्वथा संभव नहीं है कि उपन्यासकार समस्याओं का हल भी दे सके। बहुत से हल जो उपस्थित किए जाते हैं वे केवल आदर्शवाद के संबंध रखते हैं, जैसे सेवा सदन में उनमें वास्तविक जीवन की कठिनाइयों का ध्यान नहीं रखा जाता। कठिनाइयों को स्वीकार करते हुए उनका उद्घाटन कर देना भी लोगों को उनके हल में सहायता देना है। कठिनाइयों का सहानुभूति पूर्ण ज्ञान उनके शमन की ओर अग्रसर होना है। मुंशी प्रेमचंद ने गोदान में किसानों की समस्या का कोई हल नहीं बतलाया है, किंतु उनके प्रति सहानुभूति उत्पन्न कर दी है। उन्होंने झोपड़ियों में रहने वालों को महलों के स्वप्न दिखाए हैं, यथार्थ और आदर्श। उपन्यासकार के लिए यह समस्या बड़ी ही कठिन है कि वह जीवन की व्याख्या के लिए जीवन की बिल्कुल प्रतिलिपि कर दे, अथवा उसका कुछ सुधरा हुआ रूप दे। जीवन के ज्यों के त्यों अर्थात बिना कल्पना का रंग चढ़ाए पृष्ठ 175 हुए यथा तथ्य चित्रण को यथार्थवाद कहते हैं, और अपनी कल्पना के आधार पर उसका सुधरा हुआ रूप उपस्थित करने को आदर्शवाद कहते हैं। यथार्थवाद और आदर्शवाद की कई श्रेणियां हैं, और इन वादों का दुरुपयोग भी पर्याप्त होता है। यथार्थवाद की अच्छाई बुराई तथा उनकी मात्रा लेखक के उद्देश्य पर आश्रित रहती है। जीवन की धूप छांव में जैसे ताना बाना पाप पुण्य गुण दोष के तंतुओं से मिला हुआ है, वास्तविक यथार्थवाद तो गुण और दोषों को उचित अनुपात में दिखाना है, किंतु प्रायः लोग यथार्थवाद के नाम पर मनुष्यों की बुराइयों और दुर्बलताओं का उद्घाटन करते हैं। इसमें भी यदि बुराइयों का उद्घाटन इसलिए किया जाता है कि उनके प्रति ध्यान आकर्षित कर लोगों को सुधार की ओर प्रवृत्त किया जाए, तब तो वह क्षम्य हो जाता है। किंतु जब बुराइयों का उद्घाटन लोगों की कुरुचि से लाभ उठाने अथवा उसके आधार पर उपन्यास की बिक्री बढ़ाने अथवा मानव समाज से अपना बदला लेने के लिए किया जाता है, तब यह निंद हो जाता है। लोग प्रायः सुधारक के नाते ही मानव दुर्बलताओं का उद्घाटन करते हैं, किंतु वास्तव में उनका उद्देश्य कुरुचि का पोषण होता है। यथार्थवाद निंदनीय है। इसके अतिरिक्त यथार्थवाद में दो दोष और भी है। एक तो यह है कि जब लोग बुराई को फलते फूलते और साधुता को दुख उठाते देखते हैं, तब हम एक प्रकार के निराशावादी हो जाते हैं और उद्योग उत्साह और सदाचार के लिए आकर्षण कम हो जाता है। इसके अतिरिक्त स्वयं जीवन में यथार्थवाद एवं दुख और संघर्ष की मात्रा इतनी बड़ी चढ़ी होती है कि हम साहित्य में उसकी पुनरावृत्ति देखकर अपने मन को भाराक्रांत नहीं करना चाहते। आदर्शवाद उभे हुए जीवन के लिए एक सुखद वैविध्य उत्पन्न कर देता है। इसका अर्थ यह भी नहीं है कि हम पलायनवादी बन जाएं। इस प्रकार कुरुचिपूर्ण यथार्थ वाक्य पनपने का कारण यही है कि लोग मनुष्य की बुराइयों का सहज में विश्वास कर लेते हैं, भलाइयों के विश्वास करने में वे थोड़े संशयात्मक रहते हैं। कोई उपन्यासकार शुद्ध यथार्थवादी नहीं हो सकता। पूरे जीवन या जीवन के साल या दो साल के पूरे चित्रण में पाठक को उतना ही समय लग जाएगा जितने काल में की घटनाएं घटित हुई हैं। चुनाव कला के लिए आवश्यक है। लेखक यदि उज्जवल पक्ष को चुनता है तब वह आदर्शवादी कहलाने लगता है, और जब वह अंधकार में पक्ष की ओर अधिक ध्यान देता है तब वह यथार्थवादी गिना जाता है। कला में जो है वह उसके साथ होना चाहिए का भी प्रश्न रहता है। यदि हम जो हैं उसी का चित्रण करते हैं तो साहित्य से जीवन को कोई दिशा नहीं मिलती है। कविवर मैथिली शरण जी ने साकेत में ठीक कहा है, हो रहा है जो जहां सो हो रहा, यदि वही हमने कहा तो क्या कहा, किंतु होना चाहिए कब क्या कहा। प्रश्न 176 व्यक्त करती है कला ही यह यहाँ, मानते हैं जो कला के अर्थ ही, स्वार्थिनी करते कला को व्यर्थ हो, वह तुम्हारे और तुम उसके लिए, चाहिए पारस्परिकता ही प्रिय। साकेत प्रथम सर्ग। आदर्शवाद और यथार्थवाद दोनों की ही सीमाएं हैं। यथार्थवाद की ऊप और अकर्मण्यता से बचना चाहिए। साहित्य में शालीनता का परित्याग करना आत्महत्या है। कुछ लोग यह अवश्य कहेंगे कि जब वास्तविक जीवन ही गिरा हुआ है तब साहित्य में शीलनता कहां से आएगी, किंतु जीवन में सब कुछ बुरा ही बुरा नहीं है और न सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। इसलिए आदर्शवाद को भी अतिवाद के दोष से बचाने की आवश्यकता है। इस संबंध में उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी के नीचे लिखे अमर वाक्य स्मरणीय है, यथार्थवाद यदि हमारी आंखें खोल देता है तो आदर्शवाद हमें उठाकर किसी मनोम स्थान में पहुंचा देता है। लेकिन जहां आदर्शवाद में यह गुण है वहां इस बात की भी शंका है कि हम ऐसे चित्रों को न चित्रित कर बैठे जो सिद्धांतों की मूर्ति मात्र हो, जिनमें जीवन न हो। किसी देवता की कामना करना मुश्किल नहीं है, लेकिन उस देवता में प्राण प्रतिष्ठा करनी मुश्किल है। इसलिए वही उपन्यास उच्च कोटि के समझे जाते हैं जहाँ यथार्थ और आदर्श का समावेश हो गया हो, उसे आप आदर्शोन्मुख यथार्थवाद कह सकते हैं। आदर्श को सजीव बनाने के लिए यथार्थ का उपयोग होना चाहिए और अच्छे उपन्यास की यही विशेषता है। उपन्यासकार की सबसे बड़ी विभूति ऐसे चरित्र की सृष्टि है जो अपने सद्व्यवहार और सद्विचार से पाठक को मोहित कर ले। जिस उपन्यास के चरित्रों में यह गुण नहीं है वह दो कौड़ी का है। कुछ विचार। सारांश यह है कि उपन्यास की आधार भूमि यथार्थ की होनी चाहिए। उस यथार्थ को आकर्षक बनाने के लिए थोड़े चुनाव की आवश्यकता है। चुनाव में यह ध्यान देने योग्य बात है कि उपन्यासकार बुराइयों का केवल उद्घाटन कर पाठकों की मानव समाज से आस्था न उठा दे और घृणा का प्रचारक न बन जाए। उपन्यासकार को चाहिए कि वह यथार्थवाद के भीतर छिपे हुए आदर्श का उद्घाटन कर लोगों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित करे। इस प्रकार वह उसके द्वारा मानव समाज के विकास क्रम में सहायक बन सकता है। हमारे आदर्श संभावना की सीमा से बाहर न होने पाए, नहीं तो उनसे कोई लाभ न उठा सकेगा। इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित करना यही यथार्थवाद की देन है। प्रश्न 177। भाव और रस। पाश्चात्य देशों में उद्देश्य को अधिक महत्व दिया गया है, किंतु हमारे देश में रस को प्रधानता दी गई है। हमारे उपन्यास भी काव्य ही की कोटि में आते हैं, इसलिए उनमें भी काव्य के से रस और भाव होने चाहिए। रस और भाव को स्वीकार करने से विचार का तिरस्कार नहीं होता है। हमारे विचार भी हमारे जीवन के प्रति रागात्मक या विरागात्मक दृष्टिकोण के ही फलफूल होते हैं। विचारों के मूल में भी भाव ही रहते, अर्थात वे प्राय भाव प्रेरित होते हैं। काव्यों में चाहे वे महाकाव्य की भांति पद्यात्मक हो या उपन्यास की भांति गद्यात्मक हो, विचार रसिकता के कण रस के सहारे ग्राह्य बनाए जा सकते हैं। उपन्यासों में भी महाकाव्य का सा श्रृंगार वीर हास्य करुणा का समावेश होता है। प्रारंभिक काल के कौतूहल वर्धक जासूसी और तिलस्मी उपन्यासों में अद्भुत रस का प्राधान्य था। आजकल के राजनीतिक उपन्यासों में करुण के साथ वीर का सम्मिश्रण रहता है। वर्तमान समाज की करुणाजनक परिस्थिति दिखलाकर उसको मिटाने के लिए उत्साह का संचार किया जाता है। करुण में वीर का जाना अस्वाभाविक नहीं है। आए हुए हनुमान जो करुणा में वीर रस। कभी कभी उपन्यासों में पूंजीवाद या साम्राज्यवाद के प्रति घृणा भी उत्पन्न की जाती है। वहाँ विभत्स की प्रधानता होती है, किंतु विभत्स की मात्रा सीमित ही होनी चाहिए। शालीनता को छोड़े और घृणा के उत्पन्न किए बिना भी बात को बलपूर्वक कहा जा सकता है। उपन्यासों में मनोभावों का चित्रण रहता ही है। गबन में रमाकांत के कलकत्ते जाते समय भय की मनोवृत्ति का अच्छा चित्रण हुआ है। गोदान में बनावटी खान के आ जाने पर शहरी लोगों की कायरता की तुलना में होरी का साहस और उत्साह निखर आता है। रंगभूमि में सूरदास का वीरोत्साह सराहनीय है। थोड़ी बहुत भावुकता के बिना वाणी में बल नहीं आता है, किंतु करुणा को केवल थोड़ी सहानुभूति जागृत करने के लिए प्रलाप की सीमा तक पहुंचा देना सस्ती भावुकता कही जाएगी। उपन्यास को इस सस्ती भावुकता से बचाना वांछनीय है। संयम और नियंत्रण कला का जीवन प्राण है। उपन्यास को उस संयम से वंचित न कर रहना चाहिए। शैली आवश्यकता उपन्यास कथा साहित्य का मुख्य अंग है। इसकी वस्तुगत विशेषताओं और आवश्यकताओं पर प्रकाश डाला जा चुका है। खाद्य सामग्री चाहे जितनी ही मूल्यवान क्यों न हो, किंतु जब तक उसको सजा संभाल कर न रखा जाएगा वह ग्राह्य न होगी। काव्य में शैली का वही स्थान है जो मनुष्य में उसकी आकृति और वेशभूषा का है। यद्यपि हम हमेशा ठीक नहीं कि जहाँ सुंदर आकृति हो वहाँ सुंदर गुण भी होते हैं, तथापि आकृति और वेशभूषा गुणों के मूल्यांकन में बहुत कुछ प्रभावित करते हैं। यद्यपि हम विष भरे कनक घटों के पक्ष में नहीं है, तथापि दूध को भी स्वच्छ और उज्जवल पात्रों की अपेक्षा रहती है। चित्त का प्रसादन जितना कथा की मौलिकता पृष्ठ 178 और रोचकता से होता है, उतना ही शैली से। पद पद पर प्रसन्नता प्रदान करना और उत्सुकता को कायम रखना जो कथा वस्तु की आवश्यकताओं में से है, बहुत कुछ शैली पर निर्भर रहता है। कथा वस्तु के और भी गुण जैसे संगठन, क्रम, संगति और शैली के आंतरिक पक्ष से संबंध रखते हैं। शैली के गुण। यद्यपि उपन्यास नाटक की अपेक्षा कक्ष के अध्ययन की वस्तु अधिक है और उसमें गंभीर का बहिष्कार भी नहीं है, तथापि वह जनमनोरंजन की वस्तु अधिक है। उसके द्वारा सामाजिक और ऐतिहासिक तथ्य समझ में जनता के लिए बोधगम्य बनाए जा सकते हैं। इसलिए प्रसाद गुण इसका मुख्य गुण होना चाहिए और ओज तथा माधुर्य का विषयानुकूल यथास्थान समावेश होना अपेक्षित है। भाषा को सुबोध और प्रसादमय बनाने के लिए मुहावरों का प्रयोग वांछनीय है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि का चमत्कार उचित मात्रा में शैली को आकर्षक बनाने में सहायक होता है, किंतु इनके प्रयोग में मौलिकता अपेक्षित रहती है। इनके द्वारा सफल व्यंग्य भी हो सकता है। कविता की बराबर तो उपन्यास में लक्षणा व्यंजना का महत्व नहीं है, फिर भी काव्य के ये प्रसाधन उपन्यास में उपेक्षा योग्य नहीं। ये सब काव्य के पारिवारिक गुण तो उपन्यास में आवश्यक है, किंतु कौतूहल पूर्ण प्रकथन जो कथा साहित्य की विशेषता है, इसका भी विशेष गुण है। कल्पना को सत्य का रूप देना उपन्यास की मुख्य कला है। उपन्यास की भाषा की कई शैलियां हैं, किंतु उनमें दो मुख्य हैं। एक प्रेमचंद जी जैसी चलती शैली और दूसरी प्रसाद और हृदेश जी जैसी संस्कृत गर्भित शैली। उपन्यास में व्यास शैली के लिए अधिक गुंजाइश है। नाटक और कहानी दोनों से ही अधिक इसमें फैलाव की क्षमता है, किंतु उसको सीमा से बाहर न जाना चाहिए। विशेष उपन्यास साहित्य के वर्तमान विकास ने इन तत्वों की परंपरा बहुत अंश में निरर्थक सी कर दी है। अब न तो कथानक में व्यवस्था और श्रृंखलता का पहला सम्मान रहा है और न चरित्र चित्रण में संगति और संबद्धता का आग्रह है। मनुष्य क्षणिक मनोदशाओं का समूह सा दिखाई देता है और अवचेतना का द्वार खुल जाने से मानसिक जीवन और भी संकुल हो गया है। वह व्यवस्था में अव्यवस्था उत्पन्न कर देता है। यह विधा नितांत नियमहीन तो नहीं है, किंतु एक गतिशील वस्तु को नियमों में बांधना कठिन है। पिछले नियमों और तत्वों में बहुत कुछ सार है, विद्यार्थियों को उनका जानना आवश्यक है, किंतु उन सबको पत्थर की लकीर समझ लेना या उनके आंशिक अभाव के कारण किसी कलाकृति को निंद ठहरा देना कलाकार के साथ अन्याय होगा। नए कलाकारों को सहृदयता पूर्वक समझने की आवश्यकता है। उपन्यासों के प्रकार। डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने अपने साहित्य लोचन में उपन्यासों का कोटिक्रम इस प्रकार निश्चित किया है। पृष्ठ 179, घटना प्रधान उपन्यास जिनमें कौतूहल उत्पन्न करने वाली कथाएं होती हैं, जैसे तिलस्मी उपन्यास, गुलिवर्स ट्रेवल्स, डॉन क्विक्जेट आदि, सामाजिक अथवा व्यवहार संबंधी उपन्यास। ऐसे उपन्यासों में चरित्र संबंधी और व्यवहार संबंधी आख्यान होते हैं जो हमारी सामाजिक समस्याओं पर प्रकाश डालते हैं। अंतरंग जीवन के उपन्यास, इनमें घटना और पात्र कम किंतु चिंतन और भावनाओं का आधिक्य रहता है। देश काल सापेक्ष और निरपेक्ष, कुछ उपन्यासों में देशकाल का निश्चित ध्यान रखा जाता है और कुछ में इसका बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाता। इसमें एकदा या एकस्मिन देशे से काम चल जाता है। संस्कृत के उपन्यास प्रायः ऐसे ही होते थे। ऐतिहासिक उपन्यासों में देशकाल का विशेष ध्यान रखा जाता है। यह विभाग दूषित सा है। घटना प्रधान उपन्यासों में भी सामाजिक उपन्यास हो सकते हैं और सामाजिक भी घटना प्रधान हो सकते हैं। घटना प्रधान देशकाल के सापेक्ष या निरपेक्ष का बहिष्कार नहीं करते। उपन्यासों का विभाजन कई प्रकार से किया गया है, एक तो वास्तविकता प्रधान और दूसरे कल्पना प्रधान। इन्हीं कल्पना प्रधान उपन्यासों को रोमांस भी कहते हैं। एक विभाजन इस प्रकार से भी किया जा सकता है, एक घटना प्रधान जैसे तिलस्मी आदि, दूसरे चरित्र प्रधान जैसे जैनेन्द्र जी आदि के, और तीसरे घटना चरित्र प्रधान जैसे मुंशी प्रेमचंद जी के। उपन्यासों का विषय अनुकूल विभाजन भी हो सकता है, जैसे ऐतिहासिक, राजनैतिक, सामाजिक, प्रेम प्रधान, मनोवैज्ञानिक आदि। विभाजन जो हो प्रायः एक ही आधार पर होना चाहिए और पूरा होना चाहिए।